नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम लोग यहाँ पे जिस विषय पे बात कर रहे हैं, जो आपका कोर्स है सेकेंडरी स्टेज पे, मनोविज्ञान साइकोलॉजी पे हम बात करेंगे। और साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर से, जिसका शीर्षक है मनोविज्ञान से परिचय। इससे पहले कि मैं आपको मनोविज्ञान के बारे में कुछ बताऊं, उससे आपका परिचय करवाऊं, पहले आप कुछ चीजें इमेजिन करिए। क्या आपने कभी अनुभव किया है ये चीज? क्या से नहीं, बल्कि आपने अनुभव ही किया है, ये सही है, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो आप डेली रूटीन में अनुभव करते ही होंगे। कभी आपने ऐसे महसूस किया होगा कि आप जब कहीं बाहर से घर आते हैं तो आपकी माताजी या आपके घर में भाई, पिताजी, कोई भी, मतलब आपको देख के एकदम से कहेंगे, क्या हुआ आज बड़े थके हुए से लग रहे हो, क्या हुआ आज बड़े खुश हो। इसी तरह से आप अपने दोस्त के साथ कभी मिलते हैं तो वो आपसे कहेंगे, क्या बात है आज बड़े चिंतित दिख रहे हो। तो जिस तरह की आपकी मन की अवस्था होती है, मगर आपने तो उनको बताया नहीं कि आपके मन की अवस्था कैसी है, आप थक गए हो या आप खुश हो या आप चिंतित हो, ये चीज तो आपने किसी को बताई नहीं। मगर जैसे ही आप अपने माता के सामने, अपने दोस्त के सामने या अपने भाई के सामने आए, उन्होंने एकदम से आपसे ऐसे कह दिया। कैसे कह दिया होगा भला, उन्हें कैसे आपके मन की स्थिति का पता लगा होगा। सिमिलरली कई बार देखा होगा आपने कि अपने घर में हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो एकदम से रोना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं जो कई बार अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते हैं, उस केस में भी आपने देखा होगा कि जैसे दूसरा आदमी, जैसे बच्चा रो रहा है तो दादी एकदम से कहेंगी कि अरे अरे देखो बच्चा रो रहा है, इसे भूख लगी होगी, ठीक है। या फिर कभी ऐसे, हमेशा ऐसे नहीं कहेंगे कि भूख लगी होगी, कभी ऐसे कहेंगे कि अरे इसे नींद लगी होगी, कभी कहेंगे कि अरे इसे पेट में दर्द हो रहा होगा। तो वो कैसे कैसे उन लोगों को ये पता लगता है कि किस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम वहां पे हो रही है। इसमें कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि जो हमारी, हमें कई बार चीजों को जानने की इच्छा होती है कि जैसे हम देख रहे हैं कि एक ही सिचुएशन है, आप भी ऐसा अनुभव करते होंगे, आप एक ही सिचुएशन में अपनी माता के सामने तो अलग तरह से व्यवहार करते होंगे और अपने पिता के सामने अलग से व्यवहार करते होंगे, क्योंकि दोनों के साथ जो आपकी जो रिलेशनशिप है और जो आपका ओपननेस है वो डिफरेंट होगी, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग डिफरेंट है, तो आप डेफिनेटली उनके साथ व्यवहार भी डिफरेंट कर रहे होते हैं। फिर कई बार आपको दिखता है कि कई लोग तो आपके मित्र हैं, कई आपके शत्रु हैं, किसी लोगों से आज कुछ लोग आपको अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ टाइम के बाद वो आपको अच्छे लगने लगते हैं। सिमिलरली कुछ लोग जो आज हमें अच्छे लग रहे हैं, कुछ टाइम के बाद हमें वो खराब लगने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि ये कैसे होता है, ये कैसे का जो प्रश्न है कि ये कैसे हो रहा है, ये हम लोग इसके उत्तर जो है दो तरह से दे सकते हैं। जैसे कि आप अपने ब्रदर से, अपनी माता जी से पूछोगे कि आपको कैसे पता लगा कि मेरा मन आज उदास है, तो वो आपको एक आंसर दे देंगे कि भैया मुझे अनुभव से पता है, ठीक है, या क्या मैं आपको जानती नहीं, क्या मुझे तुम्हारा पता नहीं है, तो इस तरह के आपको आंसर मिल जाएंगे। एक दूसरा भी इसमें एस्पेक्ट है कि आपको जो है पर्टिकुलर एक चीज के साथ, एक लॉजिक के साथ आंसर दिया जाए, और वो जो लॉजिक के साथ आंसर दिया जाता है दैट इज नोन एज द मनोविज्ञान, उसे ही हम साइकोलॉजी कहते हैं। जब हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की, तो वो जो साइकोलॉजिस्ट है, जो मनोवैज्ञानिक है, जो मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, उन लोगों को इस तरह का ज्ञान होता है कि वो आपका जो व्यवहार है, आपकी जो गतिविधियां हैं, उनका अध्ययन करके आपके बारे में वो कुछ ना कुछ जो है वो निष्कर्ष बता सकते हैं, और उस निष्कर्ष को आप कहीं ना कहीं सत्यापित कर सकते हैं, उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपका दोस्त, आपकी माताजी, आपके रिश्तेदार जब आपके बारे में कुछ कहते हैं तो उन्होंने मनोविज्ञान नहीं पढ़ा है, मगर वो अनुभवों के अधीन, अनुभवों के आधार पर आपसे कुछ कहते हैं, तो इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो हमें अनुभवहीन व्यक्ति की जब मैं बात कर रही हूँ कि जिसे मनोविज्ञान का अनुभव नहीं है मगर वो अपने जो उसका अपना आसपास में है वातावरण है उसका ज्ञान है उसका अनुभव है वो भी दे सकता है और वो व्यक्ति भी देगा जिसने मनोविज्ञान का अध्ययन किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान की कि मनोविज्ञान होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके स्वरूप क्या है और फिर ये इसका क्षेत्र क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। सिमिलरली कि जब हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं और मनोविज्ञान के क्या क्या क्षेत्र हैं, मतलब कि मनोविज्ञान किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। आगे चर्चा को बढ़ाने से पहले हम लोग बात करेंगे कि मनोविज्ञान का स्वरूप तथा परिभाषा नेचर। तो अगर हम लोग डेफिनेशन में जाने से पहले साइकोलॉजी की बात करें तो दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, साइको प्लस लॉजिक। तो उसमें अगर हम हिंदी में बात करें तो मनोविज्ञान शब्द की जो आपकी उत्पत्ति है वो आपकी दो ग्रीक शब्दों साइके तथा लॉग्स से हुई है। देखिए इसमें एक वर्ड है साइके तथा दूसरा है लॉग्स। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइके प्लस लॉजिक। तो इस प्रकार हम लोग बात करेंगे कि मनोविज्ञान दोनों को अब हमने जोड़ दिया तो दोनों को जोड़ने से क्या मतलब हुआ कि मनोविज्ञानी का मतलब हो गया आत्मा के अध्ययन से। तो ये एक ऐसा विषय है जो आपकी आत्मा के अध्ययन से संबंधित है परंतु बाद में जो था कि इसको रिफाइन किया गया। वैदिक तथा उपनिषद काल का जो प्रमुख उद्देश्य होता था वो चेतना का अध्ययन था। तो उस केस में जो है हम लोगों ने इसका विश्लेषण किया और इसे हमने माना कि ये आपका मानसिक प्रक्रियाओं के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करता है। तो यहाँ पे जो भी अगर हम बात करें तो डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन है। देखिए आप इसकी परिभाषा को बहुत अच्छे से समझिए। मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, पहली बात है ये आपके मेंटल प्रोसेस, अनुभव मतलब आपके जो एक्सपीरियंसेस है, तथा व्यक्त व अव्यक्त। व्यक्त व अव्यक्त का मतलब है जो हम लोग दिखा रहे हैं, जो हमारे सामने है और जो हम लोग जो एक्सपीरियंस ऐसे जिनको हम लोग व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, जो हम लोग दिखा नहीं पाते हैं, दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन है। क्रमबद्ध मतलब कि एक चीज करेंगे उसके बाद दूसरी फिर उसके बाद तीसरी, तो ये सीक्वेंस में होगा, इसे हम जिगजैग में अध्ययन नहीं कर सकते। सिमिलरली इट्स ए साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी इसलिए है कि वो हर चीज जो हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसके हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं विद द टाइम और जिसकी जस्टिफिकेशंस होती हैं, दैट इज ऑल द साइंस। और ये आपकी चीजें जो है वो चेंज नहीं होती हैं, साइंस में जो तथ्य हैं वो आपके चेंज नहीं होते हैं। तो साइकोलॉजी भी इसी तरह की एक साइंस है जिसमें कि हम लोग जो है मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन करते हैं। जब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी या सबसे पहले जब मनोविज्ञान को एज ए सब्जेक्ट लिया गया तो वो 1879 में लिया गया और वो लिप्चिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में सबसे पहली बार जो है साइकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद तो साइकोलॉजी जब आपका इंट्रोड्यूस हो गया तो फिर उसकी एक लंबी यात्रा रही, डे बाय डे उसके जो है कार्यक्षेत्र बढ़ते चले गए और जो सामाजिक विज्ञान में भी एक लोकप्रिय विषय बन गया है। तो उसके बाद हमारे भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में आधुनिक काल में कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में ये मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई है। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया में भी और बाहर भी मनोविज्ञान के ऊपर या मनोविज्ञान एज ए सब्जेक्ट विषय के रूप में जो है उस पे बहुत सारा कार्य किया गया, उसको बहुत अच्छे से समझा गया और उसे जो है उसके एक सब्जेक्ट के रूप में पूरी मान्यता वहां पे प्राप्त हुई। अब हम लोगों ने समझा है कि जो मनोविज्ञान है उसकी परिभाषा को, तो अगर हम बात करें कि मनोविज्ञान की परिभाषा को थोड़ा सा और हम एक्सप्लोर करें और उसे थोड़ा सा विस्तृत बताएं, तो देखिए सबसे पहले ये किस चीज का अध्ययन करता है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, ये मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन करता है और मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान मस्तिष्क में हो रही उन क्रियाओं का पता लगाने का प्रयास करता है जिनका स्वरूप वस्तुतः दैहिक ना हो। देखिए हमारे पास अगर हम अपने आप का अवलोकन करें तो आप क्या देखते हैं कि हमारा जो है वो एक तो शारीरिक एस्पेक्ट है, हमारा जो शारीरिक संरचना एक तो वो है, ठीक है, दूसरा हमारा मानसिक संरचना है। शारीरिक संरचना में क्या क्या आ गया आपका, आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई, आपका भार, आपका रंग, आपकी भाषा, इस तरह की चीजें आ गई। मगर आपने जो मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं तो मनोविज्ञान आपके शारीरिक संरचना के बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं करता, ये बात करेगा आपके मेंटल प्रोसेस की। दूसरा जो है हमारा दैट इज अ मानसिक, आपके मन, आपके जो मस्तिष्क में जो क्रियाएं चल रही हैं उनके बारे में। तो देखिए जब हम मस्तिष्क की क्रियाओं की बात कर रहे हैं, मेंटल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो मेंटल प्रोसेस में आपने देखा होगा कि हर एक आदमी अपने तरीके से सोचता है, कई चीजों को देखने का तरीका आपका अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास एक गिलास में आधा पानी भरा हुआ सामने रखा गया हो तो हो सकता है कोई किसी से पूछे कि क्या है, तो कोई बोलेगा कि आधा गिलास भरा हुआ पानी है, दूसरा बोलेगा कि खाली गिलास, आधा खाली गिलास है, तीसरा ये कह सकता है कि आधे गिलास में पानी है और आधे गिलास में हवा है, ठीक है। तो ये अपने अपने अलग अलग परसेप्शन है। तो जो हम क्या सोच रहे हैं, अब सोचने की बात भी है कि देखिए मानसिक क्रियाएं एक ऐसी क्रिया है जो आपके, आप उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे कहीं प्रतिक्रिया देने का मन हुआ, मेरा किसी चीज को देख के मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी और मुझे लगा कि मैं उन्हें बोल दूं कि ये अच्छा नहीं है, मगर हम लोग क्या करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और वहां पे चुपचाप उस चीज को अपने मन में और हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क पे वो प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम देख लें तो बीइंग ए स्टूडेंट, अगर आप छात्र हैं तो आप ध्यान देंगे कि आपका जो वो है, आपके जो टीचर है अगर आपको किसी बात पे डांट रहे हैं और आपको कुछ प्रतिक्रिया देने का मन भी होगा तो आप उस प्रतिक्रिया को अपने मन में दबा के रख लेंगे। आपने उसको जब दबा लिया तो वो एक्सप्रेस नहीं हुई, आपने उसे व्यक्त नहीं किया, वो अव्यक्त हो गई। अब ये आपका जो व्यक्त नहीं हुआ है तो इसका आपकी जो मेंटल प्रोसेस है उस पर इम्पैक्ट आएगा। सिमिलरली आप जो व्यक्त कर देते हैं उसका भी इम्पैक्ट आता है। तो जो आपका मनोविज्ञान है वो इन सारी ही क्रियाओं का अध्ययन करता है जो आपने व्यक्त कर दी है, जो आपने अव्यक्त है, जो आपने व्यक्त नहीं करी है, और उसका मेंटल प्रोसेस के साथ, आपका आगे की लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ, आपकी जिंदगी के साथ जो है बहुत बड़ा उसकी भागीदारी वहां पे हो सकती है। इसलिए आपके मेंटल प्रोसेसेस का जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी मनोवैज्ञानिक के लिए, या हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक प्रक्रियाओं को समझना बहुत जरूरी है अगर हम वहां पे किसी भी तरह का कुछ भी वहां पे सुझाव देना चाह रहे हैं या किसी तरह का वहां पे हम लोग कोई इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। अगर हम देखें कि जब मानसिक क्रियाओं में क्या क्या हो सकता है, तो मानसिक क्रियाओं में आपका प्रत्यक्षीकरण आता है, सीखना आता है, याद करना आता है, चिंतन आता है, ठीक है। तो आपका जो भी ये इस तरह के जो आपकी मेंटल प्रोसेस जब चल रहे हैं, देखिए आप व्यक्त करें, आप व्यक्त ना करें, मगर आपका जो मेंटल प्रोसेस है उसकी रिफ्लेक्शन सम हाउ सम वेयर आपके बिहेवियर में आएगी ही आएगी, और उसी बिहेवियर की जो स्टडी है उसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं।
और दूसरा है अनुभवों का अध्ययन, अनुभवों का अध्ययन स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे मैंने आपसे सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था कि आपके माताजी, आपके दोस्त, आपके पिताजी, आपके भाई ने एकदम से आपसे पूछा कि आज आप उदास क्यों हो, आज तुम चिंतित क्यों हो, आज तुम परेशान क्यों दिख रहे हो। भाई उन्हें कैसे पता लगा? उन्हें इसलिए पता लगा कि उन्होंने अनुभव किया हुआ है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब आप चिंतित होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, तो उस टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, आप किस तरह से चलते हैं, किस तरह से बात करते हैं, आपके मुख का जो आभा है वो किस तरह से होती है, वो आप का जो है मुंह लटक जाता है, आपकी आंखें वो हो जाती हैं थोड़ी सी बुझी बुझी सी, आपका फेस थोड़ा सा डल डल सा लगेगा, तो उन्हें पता लग गया कि आपका जो है वो बिहेवियर आपका उदास होने वाला है। सिमिलरली आप मान लो किसी वजह से खुश हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, आप बहुत वो चुस्त से फील होंगे, आप हंसे हुए फील होंगे, आपकी आंखों में चमक होगी, आपके चेहरे पे स्माइल होगी, तो आपके माता पिता वहां समझ जाएंगे कि आप जो है वो आज खुश है, तो वो उनका अनुभव है। तो मनोविज्ञान भी कई प्रकार के मानव अनुभवों और भावनाओं का अध्ययन करते हैं जिसकी प्रकृति मुख्यतः व्यक्तिगत होती है। अब हमने कहा कि जो मनोवैज्ञानिक है वो मानव अनुभव और भावनाओं का अध्ययन करते हैं, मगर ये एक व्यक्तिगत श्रेणी में आता है, व्यक्तिगत प्रकृति है। मगर फिर भी हम देखेंगे कि जब मैंने एक व्यक्ति को देखा, मैंने दूसरे व्यक्ति को देखा, मैंने तीसरे व्यक्ति को देखा, और आप भी देख सकते हैं, आप देखिए कि आपने देखा होगा कि इन जनरल सामान्य तौर पे क्या होता है कि जो लोग खुश होते हैं वो डेफिनेटली उनके चेहरे पे चमक आ जाती है, डेफिनेटली उनकी आंखों में चमक आ जाती है, उनके चेहरे पे स्माइल होती है, ठीक है, और वो आनंद में होते हैं। तो आप जर्नलाइज भी कर लेते हैं फिर, मगर प्रकृति जो है वो व्यक्तिगत है। मगर मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को जब अध्ययन किया और उस अध्ययन के बाद मैंने पाया कि खुशी की स्थिति में हरेक की आंखों में चमक होती है और उसके चेहरे पे मुस्कान होती है, इसका मतलब अगर कोई चेहरे पे मुस्कान है तो वो खुश है। सिमिलरली आपने कहा कि अगर कोई दुखी है तो उस केस में उसकी बॉडी लैंग्वेज ढीली ढाली होगी, उसके चेहरा की आभा खत्म हो गई होगी, उसकी आंखें बुझी बुझी सी होंगी, तो ये दुख का कारण है। परंतु आप देखिए, सिर्फ किसी एक अनुभव को हम जर्नलाइज नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी चीजें बोली हैं और बहुत सारी चीजें छोड़ भी दी। अभी भी हम लोग जब मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने बैठेगा तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखेगा कि आप कैसे खड़े हैं, आप कैसे बैठे हैं, आपके सिटिंग पोस्चर कैसा है, आपका बात करने का तरीका कैसे, आपकी जो वॉइस है उसमें कितना कॉन्फिडेंस है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। आप सिंगल एक एस्पेक्ट को लेके हम जर्नलाइज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा कि जो आदमी मुस्कान में दे रहा है वो खुश है, तो मुस्कान तो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, स्माइल तो हम आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं। हमारे मन में व्यथा है, हम व्यथित हो रहे हैं किसी कारणवश, मगर क्योंकि हम लोग समाज में हैं, 10 लोगों के बीच में बैठे हैं और 10 लोगों के बीच में हम अपनी जो है वो चीजें नहीं व्यक्त कर सकते, इसलिए हमने एक आर्टिफिशियल बिहेवियर अपना बना रखा है। मगर वो चीज जो है, जो हमने सबसे पहले बात करी थी कि एक अनुभवहीन व्यक्ति भी उत्तर देगा और एक अनुभव वाला व्यक्ति मनोवैज्ञानिक भी उत्तर देगा, तो जो मनोवैज्ञानिक नहीं है वो वहां पे जो है वो थोड़ा सा हो सकता है कि उसे पता ना लगे कि इससे आर्टिफिशियल, मगर जो मनोवैज्ञानिक है, जिसने मनोविज्ञान का अध्ययन किया है, वो साफ वहां पे जज कर सकता है कि वो बिहेवियर जो है उनका नेचुरल है क्यों नहीं है, क्योंकि वो अनुभवों का अध्ययन है। वो अनुभव से पता लग जाएगा कि कौन सा जो है वो आपका रियल है और कौन सा आर्टिफिशियल है। तो ये आपका स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस है। इसके अलावा जो है ये आपका व्यवहार का अध्ययन है। व्यवहार का अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है दैट इज द बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। इसके अंतर्गत जो है किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी व्यक्ति के जो व्यवहार है, जैसे कि उसकी जो क्रियाएं हैं, जो आपकी डे टू डे डेली की क्रियाएं, जैसे कि आंख मिला के बात करना, आंख झुका के बात करना, आंख बचा के बात करना, या फिर आंख झपकना, या फिर आप जब बात कर रहे हैं तो बात करते वक्त आपके हाथों की मूवमेंट्स, आपके हाथों की पोजीशन, आपकी लेग्स की पोजीशन, आपके खड़े होने का स्टाइल, ये सारा हमारा व्यवहार है और इस ये व्यवहार हमारी जो एक पर्सनैलिटी है उसको निर्धारित करता है। इसके अलावा जो आएंगे ये तो हमारे बाया हो गए, इसके अलावा आपके भावनाएं हैं, आपकी जो आंतरिक स्थिति का शाब्दिक वर्णन है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं वो चीजें, कंप्यूटर पे आप कार्य कर रहे हैं, या आप कोई अपना किसी भी पर्टिकुलर चीज हॉबी में आपका जो इंटरेस्ट है, ये सब सम्मिलित हो जाता है इन सब चीजों में। और उस व्यवहार को देखिए, व्यवहार एक दिन में अध्ययन नहीं होता, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करी थी अनुभव का, तो अगर मुझे अनुभव है अध्ययन का तो जो सामने वाला उसे भी अनुभव है, उसे भी पता है कि मैं इस तरह का बिहेवियर करूंगा तो इस तरह की मेरी जो है मेरे बारे में इस तरह से सोचा जाएगा, मेरे बारे में ये जो है निष्कर्ष निकाला जाएगा या मेरी ये इमेज बन जाएगी, तो उसे भी अनुभव है, इसलिए उसे ये पता है कि मुझे किस तरह की इमेज बनानी है, तो वो अपने अनुभव के आधार पर उस तरह की इमेज बनाने के लिए उस तरह का व्यवहार करेगा। परंतु कोई भी इंसान, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हैं, अपने मूल व्यवहार से हम ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। हमारा कभी ना कभी हम अपने जो हमारा अपना मूल व्यवहार होता है, जो हमारे इंडिविजुअलिटी है, वो कहीं ना कहीं हमारी वहां पे निकल के आ जाती है। तो मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन है ये वन डे वन आवर का प्रोसेस नहीं है, इसमें हम लोगों को कई कई दिनों कई कई महीनों के लिए जो है वो हम उनका अध्ययन करते हैं, और जब उनका अध्ययन करते हैं तो उसके अध्ययन के साथ साथ हम एक रूपरेखा अपनी नोट करते चले जाते हैं और उनके आधार पे हम लोग जो है वो वहां पे निष्कर्ष निकालते हैं। अब जब हम अध्ययन की बात कर रहे हैं तो अध्ययन सिर्फ एक तरह का नहीं है कि हम सिर्फ उन्हें देख रहे हैं और उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बहुत तरह के होते हैं जिनके बारे में हम लोग अगले जो पाठ हैं उनमें चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम लोग अध्ययन करते हैं मनोविज्ञानी का। अभी हम बात कर रहे हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है परिचय के अंतर्गत कि हम लोग जो अध्ययन करते हैं किस किस का, एक आपकी मानसिक प्रक्रियाओं का, दूसरा हम करते हैं अनुभवों का अध्ययन, और तीसरा हम करते हैं व्यवहार का अध्ययन। अब अगर हम बात करें कि मनोविज्ञान का स्कोप क्या है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है मनोविज्ञान। देखिए, जब ये शुरू किया गया था तब तो ये सिर्फ इंडिविजुअलिटी से स्टार्ट हुआ था कि हम ये समझ सके कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बिहेवियर अगर ऐसा है तो क्यों है। बस हम ये अभी भी जांचना चाहते हैं कि कोई ये अच्छा है ये बुरा है। जैसे कि मान लो कि कोई, आपने सुना होगा कि कई बार वो होते हैं क्रिमिनल्स होते हैं और वो सीरीज किलर होते हैं जो एक के बाद दूसरे को मर्डर करते चले जाते हैं, तो व्हाई इट इज सो, किसी को क्या मजा आएगा किसी को मारने के लिए, और वो भी किसी पर्टिकुलर एक स्टाइल में। तो उसके पीछे जो है वो एक मनोवृत्ति उसकी जांचने का, उसका अध्ययन करने की जो सबसे पहली इनकी कोशिश थी, मगर धीरे धीरे जो था वो इसका क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता चला गया। ये सिर्फ व्यक्ति के पूरे जीवन भर का अध्ययन ही नहीं करता है, बल्कि उसके मानसिक प्रक्रियाओं और जो उसकी क्षमताएं हैं उसको भी ढूंढने का प्रयास करेगा। और इसकी जरूरत क्या है, उससे भी बड़ी बात है कि हम लोग ये कर रहे हैं तो करना क्यों है, क्योंकि जब मुझे एज ए इंडिविजुअल अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, मतलब कि मुझे अपनी कमजोरियों और अपने जो स्ट्रेंथ है, जो मेरी विशेषताएं है, उनका पता लगेगा, तो मैं उन पे काम करके अपनी कमजोरियों को ओवरकम कर पाऊंगी और अपनी क्षमताओं को बढ़ा पाऊंगी। उससे क्या होगा, उससे मेरा जीवन जो है वो और सुगम हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, और मैं अपने अच्छे तरीके से, अपने बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी सकती हूँ। हम ये भी जानते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति हैं वो एक समान तो होते नहीं है, और जब हम बात करें एक समान की, तो मैंने कहा कि हम शारीरिक संरचना की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, शारीरिक संरचना में भी एक जैसे नहीं होते, जैसे कि लंबाई, भार, चौड़ाई, रंग, चेहरे की बनावट, आपके फीचर्स, ये सब अलग अलग होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि व्यवहार में भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को आप मदद करने के लिए बोलेंगे तो वो स्टॉप से कहेंगे कि हम नहीं करते। कुछ लोगों को आप बोलेंगे भी नहीं मगर वो ऑब्जर्व करेंगे कि आपको सहायता की जरूरत है तो वो एकदम से वहां पे सहायता के लिए आ जाएंगे। एक दिन जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, एक दिन मैं बस स्टैंड पे खड़ी थी तो मेरे हाथ में चोट थी तो मेरे पास बैग था, तो जैसे मैंने बैग उठाने की कोशिश करी तो समवन वाज देयर कि आप उठाने दीजिए मैं उठा देता हूँ। मैंने किसी को कहा नहीं है। समहाउ ऐसा भी होता है कि आप किसी को कहेंगे प्लीज हेल्प मी और वो रिफ्यूज कर दे, तो आपके जो गुण हैं, आपकी जो बुद्धि है मतलब आपकी सोचने की शक्ति और फिर आपका व्यक्तित्व, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी विचार और आपकी रुचियां जिसे हम हॉबीज कहती हैं, सब तो अलग अलग होते हैं। किसी को खाना खाना अच्छा लगता है, किसी को खाना खाना नहीं अच्छा लगता, मतलब कि बहुत ज्यादा जंक फूड खाना अच्छा लगता है जबकि लोगों को जंक फूड खाना अच्छा नहीं लगता, तो ये उसके अपने है। किसी को टेनिस खेलना अच्छा लग सकता है, किसी को बैडमिंटन खेलना अच्छा लग सकता है, किसी को कुछ भी खेलना अच्छा नहीं लग सकता, किसी को गाना अच्छा लगेगा तो किसी को नाचना अच्छा लगता है, तो ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। और ये जो आपका मनोविज्ञान है वो इन्हीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात करता है। फिर इसके अलावा जब हम बात करेंगे, जो मनोविज्ञानिक है वो सिर्फ आपकी बातें ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं, उस केस में आपका जो है वो हमेशा यही करेंगे कि आपका वो कंटिन्यू उसको करते हुए ये देखेंगे जब उन्होंने अध्ययन कर लिया और उस अध्ययन करने में उन्होंने कोई गैप देखा, उन्होंने कोई प्रॉब्लम देखी, कोई समस्या देखी। और जैसे कि कई बार क्या हो रहा है कि आजकल के सिनेरियो की हम बात करें तो बच्चे जो है वो जल्दी एग्जाइटी के वो हो जाते हैं, मरीज हो जाते हैं, डिप्रेशन स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है लोगों का, इवन की स्टूडेंट्स का भी। देखो एक एज के बाद जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ती हैं तब तो हमें कहीं ना कहीं अगर मान लिया जाए तो माना भी जा सकता है कि चलो स्ट्रेस हो गया कि घर की जिम्मेवारियां हैं, बच्चों की जिम्मेवारियां हैं, परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जिम्मेवारियां हैं, तो हल्का फुल्का स्ट्रेस हो गया। मगर जो बच्चे अभी सिर्फ स्कूल जा रहे हैं उनका काम सिर्फ शिक्षा लेना है और शिक्षा के साथ उनका कुछ भी नहीं है, वो भी बच्चे स्ट्रेस महसूस करते हैं। अगर टीचर उनको जरा सा डांट देती हैं, डांटना मीन्स कि समझा देती हैं, उनको उस चीज का भी स्ट्रेस हो जाता है। उनके नंबर जो है अगर 1-2% ऊपर नीचे हो जाते हैं उनको उसकी एग्जाइटी हो जाती है। आपका एग्जामिनेशन आने लगा, एग्जामिनेशन का फोबिया हो गया। अरे भाई ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि किस वजह से ये एग्जाइटी है, किस वजह से ये स्ट्रेस है? तो जो मनोविज्ञान है वो उन चीजों का भी उत्तर देता है। अध्ययन तो उसने कर लिया कि बच्चे को एग्जाइटी हो रही है, बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है, बच्चा अपना मूल जो उसकी व्यक्तित्व है उससे हटकर बिहेवियर कर रहा है, जो उसकी अपनी मनोदिशा है उसकी जो है वो सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रही है, तो उसका व्यक्तिगत जो उसका जो फ्लक्चुएशंस है उनके बारे में तो मनोविज्ञान बता ही रहा है, साथ में ये भी बता रहा है ये किस वजह से हो रहा है। और जब हमें वजह भी बता देगा तो फिर हमें आंसर भी बताएगा। और अगर मैं मनोविज्ञान के विस्तार क्षेत्र को कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में बताऊं तो इट्स जस्ट लाइक ए डॉक्टर। मनोविज्ञानिक आपका सिर्फ उस डॉक्टर की तरह होता है जो आपके मिलने पे आपको ऑब्जर्व करके ये बताएगा कि आपको बीमारी क्या है और बीमारी का निदान क्या है। तो मनोविज्ञानिक भी एक तरह का डॉक्टर है जिससे आप जो है परामर्श ले सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का क्या निदान हुआ जा सकता है। अब इसके अलावा जो है आप ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वो मनोवैज्ञानिक है तो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को ही बोलेगा और वो नेगेटिव है, ये नकारात्मक पहलू नहीं है। जिंदगी में समस्या आनी नॉर्मल बात है और उसके लिए परामर्श लेना भी नॉर्मल बात है। पहले हमारी जॉइंट फैमिलीज होती थी तो छोटे बड़े लोग जो है वो एक दूसरे से परामर्श ले लेते थे, बड़ों से हम परामर्श ले लेते थे उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, मगर क्योंकि अब जो है हमारे पास एकल फैमिलीज हैं, एकल परिवार हैं, तो उस केस में जो है हमारा, हमें जो परामर्श है वो सही तरीके से नहीं मिलता, तो उस परामर्श के लिए मनोवैज्ञानिक है, हम उनसे जो है वो वहां पे परामर्श ले सकते हैं। सिमिलरली इसके अलावा जो परामर्श की जब बात आ रही है, तो सिर्फ हमारे साथ जो हमारे मेंटर प्रोसेस है उसी के लिए, या जो हमारे व्यवहारिक चेंजेस आ रहे हैं, व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं उसके लिए ही नहीं, बल्कि मुझे कल को क्या करना है। जैसे अगर मैं स्कूल की बात कर रही हूँ, आज एज ए स्टूडेंट आप लोगों के छात्रों की बात करो, तो आप मनोवैज्ञानिक से आपके व्यवसायिक निर्देशन व परामर्श के लिए भी बात कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो हिडन है, कुछ चीजें आपके मेंटल प्रोसेस में है मगर आपने कभी व्यक्त नहीं होने दी, कुछ आपकी हॉबीज है, कुछ चीजें आपके ड्रीम प्रोजेक्ट होंगे, तो आपको कई बार खुद कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि वन डे माई चाइल्ड वॉज डिस्कसिंग, मेरा बेटा भी मुझसे डिस्कस कर रहा था, मम्मी आई एम कन्फ्यूज विद माई हॉबी एंड विद द एजुकेशन, कि मेरे को कन्फ्यूजन होता है कि मैं अपनी हॉबी को एज ए कैरियर ले लूं या फिर मुझे अभी स्टडी करनी है और मैं स्टडी करके जो है मैं अपना जो पहले से ड्रीम बना रखा है मैं उसे ही एज ए कैरियर बनाऊं। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो हु विल गाइड यू, कौन आपको बताएगा, वो मनोवैज्ञानिक के पास आंसर होते हैं। वो आपकी जो आपके अनुभव हैं, जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपके मेंटल प्रोसेसेस हैं, उन सबको जो वो फील करेंगे, देखेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे और उसके बेस पर वो वहां पे आपको बताएंगे कि किस तरह का वो आप व्यवसाय जो है वो वहां पे आप चूज कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, तो प्रक्रियाओं में जब हम प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले जो है हमें किसी का भी अध्ययन करने के लिए कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज को जब समझेंगे, किसी भी व्यवहार को तब बता पाएंगे ना जब आपने उन चीजों को समझा होगा। तो इसमें जो चीजें आपको सबसे पहले समझनी है, जो सामूहिक रूप से किसी विशेष व्यवहार को प्रभावित करती हैं, ये आपकी जो है वो सारी की सारी, दीज आर द फैक्टर्स, ये कारक हैं जो आपके व्यवहार को प्रभावित करेंगे। और ये व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इनका आपको पता होना चाहिए और ये प्रक्रियाएं भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, दैट इज द संवेदना, सेंसेशन। संवेदना से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जो हमारे हमारे उत्तेजनाओं के प्रति हमारी जागरूकता से है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपकी सेंसेशन, संवेदना, संवेदना होना मतलब कि किसी चीज के प्रति आपकी उत्तेजना। तो जैसे आपने देखा होगा कि आपको कहीं किसी बाग से, पार्क से आप गुजरते हैं और आपको खुशबू आती है, तो आप इधर उधर देखते हैं कि कौन सा फूल खिला हुआ है, किसकी इतनी अच्छी खुशबू है, ठीक है। सिमिलरली जब आप कहीं से गुजरते हैं और आपको दुर्गंध का एहसास होता है, तो आप एकदम से अपना मुंह बंद कर लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, तो वो सेंसेशन है, वो संवेदना है कि हमने कुछ महसूस किया। आप देखिए, आपके पेरेंट्स आपको टच करते हैं, आपको कितना अच्छा फील होता है, मगर कोई अजनबी आपको टच करे तो आपको अच्छा फील नहीं होता। सेंसेशन, ये हमारी संवेदनाएं हैं जो हमें रिफ्लेक्ट करती हैं, और इन संवेदनाओं का ज्ञान ही हमें अपने व्यवहार से भी पता लगेगा। जैसे कि मैंने कहा कि आपको किसी ने टच किया तो आपको बुरा लगा, तो वो आपके व्यवहार में प्रभावित होगा, क्योंकि आपका व्यवहार उसे या तो साइड करेगा, उसे रिफ्यूज करेगा, रिजेक्शन होंगी। जबकि आपकी मदर जब आपको हग करती हैं, तो यू फील सो बाम कि आप उनके साथ हग करते रहना चाहते हैं, वहां पे रिजेक्शन नहीं है, वहां पे एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है उनकी तरह। इसी तरह से अटेंशन कि अवधान, आपका अवधान, जब हम बात कर रहे हैं अटेंशन की, तो हम देखो हमारे आसपास जो है वो कई कुछ होता रह रहा है, ठीक है। हमारे आसपास कई घटनाएं एट ए टाइम घट रही होती हैं, हवा चल रही है, म्यूजिक चल रहा है, कहीं कोई साइकिल जा रही है, कोई बस जा रही है, कभी कार जा रहे हैं, कोई पैदल वाला जा रहा है, कोई अपने, मगर आपका अटेंशन किस चीज पे है ये डिपेंड करता है कि आप उस टाइम जो है वो किस स्थिति में है। तो आप एग्जाम्पल के लिए मान लो आप रोड पे चले हैं अपने छोटे भाई के साथ, तो आपका ध्यान किसके ऊपर होगा, सारी की सारी अटेंशन आपकी अपने छोटे भाई पे होगी कि कहीं उसे चोट ना लग जाए, कहीं बस गाड़ी वगैरह, मतलब आपका ध्यान जो है उस, आपकी अटेंशन किसके ऊपर है, बच्चे के ऊपर, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी के ऊपर, इवन कि अपनी अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी से ज्यादा ध्यान जो है आपका, वो आपने छोटे भाई के सेफ्टी और सिक्योरिटी पर है। तो वो आपने किस चीज पे अटेंशन देना है, ये फर्क पड़ता है। फिर प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, दैट इज द अल्टीमेट, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। परसेप्शन जो होते हैं वो हमारे जो अनुभव हैं, जो भी हमने बचपन से सीखी है चीजें, चाहे वो हमने फॉर्मल सीखी है, चाहे हमने वो नॉन फॉर्मल सीखी है, तो नॉन फॉर्मल और फॉर्मल किसी में भी सीखी है, उन सब केसों में हमारा जो होता है वो ये है कि हमने एक पर्टिकुलर उस चीज के बारे में परसेप्शन बना लिया। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपके चेहरे पे मुस्कान है तो इसका मतलब आप खुश है, ये मेरा परसेप्शन है, ठीक है। अगर आपने स्माइल नहीं है तो आप दुखी हैं, तो ये परसेप्शन है। और सबका कैसी पर्टिकुलर बिहेवियर के प्रति अलग अलग सो परसेप्शन जो है, प्रत्यक्षीकरण जो है वो हो सकता है। फिर क्या है कि लर्निंग, लर्निंग जो है ये अनुभव से भी होती है और अभ्यास से भी होती है। अनुभव से मतलब कि जो चीजें हम देख रहे हैं, मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया था आपको कि हमने बोला कि चेहरे पे स्माइल है तो आप खुश है, ये हमने अनुभव किया कि हर वो इंसान जो खुश होता है वो स्माइल देता है, उसके आंखों में चमक होती है। और अभ्यास जैसे कि नया ज्ञान और कौशलों के अर्जन में हमारी सहायता करता है, जैसे कि मैं अभी आपको जो मनोविज्ञान पढ़ा रही हूँ, तो ये आप इसे अभ्यास से सीखेंगे, आप कुछ तो अनुभव से है ही है, मगर जो मनोवैज्ञानिक, इतनी हम लोग सारा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, कैसे अध्ययन कर सकता है, अध्ययन करने के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी, अध्ययन किस तरह से किया जाएगा, उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, तो ये सब चीजें जब आप सीखेंगे तो आप भी एक मनोवैज्ञानिक की तरह सोचने हो जाएंगे। तो सीखना जो है वो हम अनुभव के आधार पे सीखते हैं और अभ्यास द्वारा सीखते हैं, और जो सीखते हैं वही हमारा जो है हमारे माइंड में वो कहीं ना कहीं हमारा स्टेबल हो जाता है, मेमोरी, स्मृति। तो जो हम सीखते हैं वो हमारे स्मृति तंत्र में धारण हो जाता है, स्मृति तंत्र में जो भी चीजें धारण होती हैं उनका एक टाइम स्पैन होता है, एक शॉर्ट मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, और वो हमारी जो उसकी जो प्रक्रिया है उसको भी हम मेमोरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा विस्तार से, पूरा एक पार्ट जो है हम स्मृति पे पढ़ेंगे। और सबसे बड़ा जो है कि आवश्यकता पड़ने पर जो हमने याद है वो उस समय रिकॉल करते हैं और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसे यूज करते हैं। जैसे मान लो आप एक गली में चले जा रहे हैं, ठीक है, और अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए या आपको कुत्ता भौंकने लग जाए तो आप क्या करेंगे, या तो पत्थर उसे मारेंगे, मान लो वो और भी खतरनाक है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, वहां से भाग निकलेंगे, अपना रास्ता बदल लेंगे। तो ये जो मेमोरी थी, ये जो परसेप्शन था आपका, ये सिर्फ आपके अनुभव पे है और आपने उसी के आधार पर, आपने ये कोई रट्टा नहीं मारा था कि डॉग आएगा तो मैं भागूंगा या डॉग आएगा तो मैं उसे पत्थर मारूंगा, वो आपने कहीं लर्न नहीं किया था, ना ही आपने उसकी कोई स्ट्रैटेजी बनाई थी, मगर वो जैसे ही आपके क्रिया हुई, आपके स्मृति ने, आपकी मेमोरी ने एकदम से आपको स्टिमुलस दिया और आपने वहां पे रिएक्शन किया। और फिर आता है आपका थिंकिंग, चिंतन। चिंतन के अंतर्गत हम करें तो जो विभिन्न समस्याओं के समाधान है वो हम लोग जो सोचते हैं, समझते हैं, और फिर अपनी जो हमारी जानकारी है उस जानकारी के अध्ययन पर हम लोग जो है वो उन समस्याओं से जूझते हैं, उन समस्याओं का तर्कपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं और फिर उस समस्या का एक विवेकपूर्ण निर्णय लेके उसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल दिया कि आपका अगर एक सामना कुत्ते से हो जाता है तो उस केस में आप 2 मिनट के लिए, मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का काम होता है, हमें लग रहा है कि बहुत लंबा काम है, हमने सोचा कि क्या मैं रास्ता बदल सकता हूँ, क्या ये पत्थर मार के भाग जाएगा या मुझे भागना है, तो आपने विवेकपूर्ण जो भी वहां पे स्थिति होगी उसके हिसाब से आप अपना निश्चय ले लेंगे। और ये निश्चय जो है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग भी हो सकता है। अब बात करते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र की, तो जहाँ पे मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात है, तो सबसे पहली बात होती है ये असामान्य मनोविज्ञान के एबनॉर्मल, कि सबसे पहले जो फोकस था वो ये था कि जो एबनॉर्मल, जो सामान्य व्यवहार नहीं होता है, एक तो सामान्य व्यवहार है दुखी हो रहे हैं सुखी हो रहे हैं जो भी है, तो उस केस में एक ऐसा व्यवहार होता है जो सोसाइटी में समाज में स्वीकृत नहीं होता। और वो व्यवहार जैसे कि मैंने बताया कि कोई इंसान, आप सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपनी चल रहे हैं, मगर कोई आपको एकदम से थप्पड़ मार दे वो असामान्य व्यवहार है, कोई आपको गाली गलौज करने लगे वो असामान्य व्यवहार है, कोई आदमी हमेशा रोता रहे ये भी असामान्य व्यवहार है, ठीक है, कोई चिंता ही करता रहे वो भी असामान्य व्यवहार है। तो जो ये असामान्य व्यवहार है उनके बारे में उनकी उस व्यवहार का स्टडी करना और उसके आधार पर भविष्यवाणी करना और उसके जो है अंतर्गत जो भी उसको नियंत्रण करने के लिए प्रयास करना, वो भी हम मनोविज्ञान में सीखते हैं। फिर आपका जो कई बार क्या होता है कि कुछ आपकी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनके मनोवैज्ञानिक विकार जो हैं वो आपके जो सिर्फ हम लोग जनरल डिस्कशन से नहीं कर पाते हैं, तो उसमें जो है वो पूरा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होता है जो कि आप मनोवैज्ञानिक जो है वो वहां पे करेंगे। और उसके बाद उसके लिए क्या क्या हम रेमेडीज यूज कर सकते हैं, किस तरह से उसका उपचार किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। एजुकेशनल मनोविज्ञान, आजकल आपने देखा होगा कि हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होता है, क्योंकि बच्चों की मैंने अभी बात करी थी कि आजकल शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को जो है वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्हें कौन सा व्यवसाय चूज करना है, किस तरह का व्यवसाय चूज करना है, वो भी उनको प्रॉब्लम आती है। तो जो शिक्षक मनोविज्ञान है वो इन्हीं तरह के प्रॉब्लम्स के साथ, इन्हीं तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशंस करता है कि आपको जो आपकी विद्यार्थियों की जो अभिक्षमता है, कौशल है, उनका जो बौद्धिक क्षमता है उसका आकलन करना और उसके जो उसके आधार पर उनकी जो कठिनाइयां उन्हें आ रही हैं उनमें सहायता प्रदान करना। फिर जैसे कि हमारे इन्वायरमेंटल पर्यावरण मनोविज्ञान है जो कि आपके पर्यावरण में जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है उनका डायग्नोज करना, उनके बारे में स्टडी करना और उनका फिर से उपचार वहां पे करना। हेल्थ मनोविज्ञान जो क्षेत्र बीमारियों की प्रारंभिक प्रगति और उसके उपचार पर, कई बार क्या होता है कि हम बीमारी की वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, तो उस केस में आपको अपनी बीमारियों के से जो मनोवैज्ञानिक जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ आपका डिस्कशन करना। और इसी तरह से मनोवैज्ञानिक के बहुत सारे क्षेत्र हैं जैसे कि विकासात्मक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान और आपका काउंसलिंग, आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी, आपकी पीस साइकोलॉजी, शांति मनोविज्ञान जिसे कहते हैं, फिर आपकी पॉलिटिकल साइकोलॉजी, वुमेन साइकोलॉजी, तो बहुत सारे आपके हैं। और आज के लिए हमने इतना ही बात किया परिचय में कि मनोविज्ञान क्या होता है। तो आप समझ लें कि मनोविज्ञान जो है वो हमारा किसी भी व्यक्ति के अनुभवों, व्यक्त तथा व्यक्त मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन है। शुक्रिया, धन्यवाद।